अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है बेगुनाह। मई का महीना था। वाराणसी में भयंकर लू चल रही थी। पशु पक्षी तक अपने घोंसलों में दुबके पड़े थे। सड़क पर इक्के दुक्के लोग जिन्हें बहुत जरूरी काम था सिर पर तौलिया लपेट कर आ जा रहे थे। लोग कहते थे कि इतनी गर्मी आज तक कभी नहीं पड़ी थी। ये सही था कि मई महीने का अंत काफी गर्म रहता था, पर अब की बार तो हद हो गई थी। ऐसी गर्मी में दोपहर के 1 बजे के लगभग श्रीमती धवन कूलर के आगे गाल पर हाथ रखे सोच में डूबी बैठी थीं। चिंता का कारण ये था कि हफ्ते भर पहले उन्होंने अपने किराएदार को उसके दुर्व्यवहार के कारण हटा दिया था। श्रीमती धवन साल में 2 बार वाराणसी अपनी इस कोठी में आती थीं। इस कोठी से उन्हें अत्यधिक लगाव था क्योंकि उनके स्वर्गीय पति ने इसे बड़े चाव से बनवाया था। यहाँ आने पर उन्हें आंतरिक शांति मिलती थी। वैसे 10 महीने वो अपने बेटे के पास व्यतीत करती थीं। किराएदार के रहने से समय पर बिजली, टेलीफोन इत्यादि के बिलों का भुगतान हो जाता था। दूसरी सुविधा उन्हें ये भी थी कि किराएदार की फैमिली के कारण उनका मन लग जाता था और कोई परेशानी आने पर उसकी मदद भी मिल जाती थी। अब समस्या ये थी कि इतनी जल्दी उनके मनलायक किराएदार उन्हें कैसे मिल पाएगा। यही चिंता उन्हें सता रही थी। वैसे तो कई किराएदार आने को उत्सुक थे, पर किसी की फैमिली बड़ी थी तो कोई उनके स्तर का नहीं था। उन्होंने अपने कई मित्रों से कह रखा था, पर अभी तक उनकी समस्या का हल नहीं हो पाया था। उनका वायुयान से आरक्षण हो चुका था। उन्हें हफ्ते भर बाद ही चले जाना था। घर में इस समय वो एकदम अकेली थी। नौकरानी उन्हें खाना खिलाकर चली गई थी और अब वो 4 बजे चाय के समय आने वाली थी। यकायक कॉल बेल घनघना उठी। उनकी तंद्रा भंग हुई। वो दरवाजे के पास आई और झोंक में उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, जबकि वो हमेशा सुरक्षा चेन के जरिए आगंतुक को देखकर दरवाज़ा खोलती थी। दरवाज़ा खोलते ही वो चौंक कर पीछे हटी। उन्होंने देखा एक कद्दावर अधेड़ व्यक्ति जिसने अपना सिर तथा मुंह तौलिए से ढक रखा था। केवल थोड़ा सा चेहरा खुला हुआ था जिससे उसकी चमकीली आँखें झाँक रही थीं। श्रीमती धवन का कलेजा धक धक कर रहा था। उनके बदन पर इस समय करीब 30-40 हज़ार के जेवर थे तथा घर में काफ़ी कीमती सामान था। आगंतुक ने बड़ी शालीनता से उनसे कहा, मैंने सुना है आप अपना ऊपर का फ्लैट किराए पर देना चाहती हैं, मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। श्रीमती धवन थोड़ा आश्वस्त हुई। उन्होंने कहा, आइए अंदर आ जाइए। ये कहकर उन्होंने आगंतुक से बैठने का इशारा किया। वह व्यक्ति बड़े दयनीय दृष्टि से उनकी तरफ देखकर बोला, मैं गरीब आदमी हूँ, इस समय मुझे मकान की सख्त ज़रूरत है। श्रीमती धवन ने कहा, फ्लैट का किराया 1,000 रुपये है, शायद इतना आप दे नहीं पाइएगा, और वैसे भी बिना आपके बारे में जानकारी किए मैं अभी वादा नहीं कर पाऊँगी। उसने अपनी गमगीन आँखें ऊपर उठाकर कहा, मेरे बारे में जानकारी ना करें तो कृपा होगी, वैसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। श्रीमती धवन ने ज़रा कड़ाई से कहा, क्यों भाई, आपके विषय में मैं जानकारी क्यों ना करूँ? उसने सिर नीचा करके कहा, क्योंकि मैं बदनाम हूँ। श्रीमती धवन ने ज़रा तेज़ होकर पूछा, क्या आपका चरित्र खराब है? उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। श्रीमती धवन ने फिर खींचकर पूछा, क्या आपको चोरी के इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ा था? आगंतुक ने घबरा कर कहा, ऐसी बात नहीं है। अब श्रीमती धवन को गुस्सा आ गया। वो बोली, तो क्या बात है, आप साफ साफ कहते क्यों नहीं है? आगंतुक की आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। वो तौलिए में अपना चेहरा छुपाकर सिसकने लगा। श्रीमती धवन ने अपने 70 वर्षीय जीवन में पहली बार एक जवान आदमी को सिसक सिसक कर रोते देखा था। काफ़ी देर तक वो तौलिए में चेहरा छुपाए रोता रहा। जब उसका रोना कुछ कम हुआ तो उन्होंने बड़ी नरमी से आगंतुक से कहा, ये पानी पीजिए, फिर मुझे सब बता दीजिए, बताने से आपका दिल हल्का हो जाएगा, फिर मुझसे जो सहायता हो सकेगी मैं करूँगी। काफ़ी देर तक सिसकियाँ भरता रहा, फिर उसने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाईं। उन आंखों में अथाह वेदना निहित थी। श्रीमती धवन को लगा कि इस आदमी को कोई गहरा धक्का लगा है। काफ़ी देर तक शायद वो अपनी आप बीती सुनाने के लिए अपने मन को संतुलित करता रहा। फिर उसने एक दीर्घ निश्वास लेकर कहना शुरू किया, माता जी, आप तो शायद जानती होंगी कि आपके मकान से एक फरलांग की दूरी पर एक बहुत बड़ा मकान है जिसमें बहुत से मध्यम श्रेणी के परिवार रहते हैं। मकान मालिक पक्का शराबी है। अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ वहीं एक कमरा किराए का लेकर मैं रहता था। मैंने मकान मालिक की शराब छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। मैं काफ़ी अंशों में सफल भी हो गया। मकान मालिक ने शराब पीना बहुत कम कर दिया। अब वो मेरा अच्छा मित्र बन गया था। अचानक मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं उसके तीमारदारी में इतना व्यस्त हो गया कि मकान मालिक से मिलना करीब करीब बंद हो गया। इधर मकान मालिक के शराबी मित्रों का फिर से जमघट लगना शुरू हो गया। एक दिन जब मैंने उसे नशे में धुत देखा तो बहुत समझाया कि शराब उसे बर्बाद कर देगी, इसे उसे छोड़ देना चाहिए। नशे में मालिक ने मुझे बहुत गालियाँ दी और फौरन ही कमरा खाली करने का आदेश दे दिया। दो दिन बाद ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया। अपनी दोनों बेटियों को लेकर मैं दूसरे मकान में चला आया। ये मकान भी आपके घर के ही पास है। विश्वविद्यालय में मैंने बहुत दिन लीडरी की। पढ़ाई भी मेरी कम हो पाई थी। मैंने सोचा कि लीडरी से पेट भर रोटी तो मिल नहीं पाएगी। इस कारण मैंने नौकरी खोजनी शुरू कर दी। भाग्य से मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। इस नौकरी के अलावा मैं थीसिस भी टाइप करने लगा। जब मैं नौकरी पर चला जाता था तो मेरी बच्चियाँ अकेली रह जाती थीं। इस कारण मैंने एक परित्यक्ता से विवाह कर लिया। जब मेरी पत्नी को पता चला कि मैंने नसबंदी करवा ली है तो वो बहुत नाराज़ हुई। अब बोली, मुझे अपनी संतान चाहिए। रोज़ रोज़ की कलह से तंग आकर मैंने नसबंदी खुलवा ली। वर्ष के अंदर मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। ऐसे तो पहले से ही मेरी पत्नी का अपनी सौतेली बेटियों के संग बुरा बर्ताव था, पर जब से उसकी अपनी बेटी पैदा हुई उसकी मेरी पहली पत्नी की बेटियों के प्रति क्रूरता बढ़ती गई। मैं सब देखता पर मन महसूस कर रह जाता। मैं जानता था कि ज़रा सा हस्तक्षेप करने पर यह स्त्री घर में महाभारत मचा देगी और पड़ोसियों को माखौल उड़ाने का मौका मिल जाएगा। सुबह से शाम तक मेरी दोनों बेटियों से वो निर्दयी औरत काम करवाती थी और जब खाना खाने का समय आता तो उन्हें आधा पेट खाना मिलता। कई बार छुपकर मैं देख चुका था। मेरी बेटियां मेरे रहते हुए भी अनाथ थीं। उस स्त्री की क्रूरता का क्या बखान करूँ। काम में ज़रा सी देर होते ही वो मेरी बेटियों को पीट डालती थी। वो दोनों मेरी ओर कातर नेत्रों से निहारती, मैं असहाय सिर नीचा करके निकल जाता था। कभी कभी मैं अपनी बेटियों को चुपचाप पैसे देता था ताकि वो कुछ खा सकें। छोटी होने पर भी मेरी बेटियां बड़ी समझदार थीं। शायद वे मेरी मजबूरी समझती थीं। मेरी आंखों में अपने प्रति प्यार देखकर उन्हें सांत्वना मिल जाती थी। एक दिन जब मैं चुपचाप अपनी बेटियों को पैसा दे रहा था तो मेरी पत्नी ने देख लिया। पहले तो उसने मेरी बेटियों के हाथ से पैसे छीन लिए। इसके बाद उसने कई तमाचे मेरी बेटियों को मारकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें शोले उगल रही थीं। वो चीखी, मुझे पैसे देने में तुम्हारी नानी मरती है और इन चुड़ैलों को मुझसे छुपाकर तुम रोज़ पैसे देते हो? मेरे तो करम फूट गए जो तुम जैसा नालायक मेरे पल्ले पड़ा। याद रखना, अगर तुमने इन कुलक्षणियों को पैसे दिए तो किसी दिन मैं इन्हें मार मार कर अपाहिज कर दूंगी। 2 साल से मेरे हृदय के किसी कोने में ज्वालामुखी धधक रहा था। उसे शायद अवसर की प्रतीक्षा थी। उसके विस्फोट का अवसर शायद आ गया था। मेरा गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया था। सहने की भी एक हद होती है। घर की शांति कायम रखने के लिए मैं अब तक चुपचाप दबता रहा और ये स्त्री उसका अनुचित लाभ उठा रही थी। मैंने उसकी तरफ घृणा से देखते हुए कहा, तू स्त्री के वेश में राक्षसी है। इन बिना माँ की बच्चियों को तू इतना सता रही है, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। वो चीख कर बोली, क्या कर लोगे, मुझे फांसी पर चढ़ा दोगे? तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं ही इस घर में आग लगा दूंगी। गुस्से में मैं अपना आपा खो बैठा। मैंने कसकर एक थप्पड़ उसे मारते हुए कहा, पिशाची, तू वर्षों से इस घर में आग लगा रही है, अब सिवा राग के यहाँ बचा ही क्या है? मैं फिर एक मिनट भी नहीं रुका। अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर मैं दूसरे कमरे में चला आया। बेटियाँ बैठी रहीं और मैं थीसिस टाइप करता रहा, क्योंकि मुझे उसी दिन ही देनी थी। थीसिस ख़त्म करके उसे देने मैं घर से निकल पड़ा। जब लौटा तो देखा कि मेरे घर के आगे पड़ोसियों की भीड़ लगी है। मैंने आश्चर्य से उनसे पूछा, भाई क्या बात है, मेरे घर के आगे इतनी भीड़ क्यों है? मेरी ओर घृणा से देखते हुए वे बोले, जरा इस हत्यारे की नाटकबाजी देखो, बीवी को पंखे से लटकाकर हमसे ही पूछ रहा है। हत्यारा शब्द सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। मैं भागता हुआ घर में घुसा। मैंने देखा कि मेरी साल भर की बेटी को मेरी बिटिया गोद में लिए सिसकियां भर रही है और पंखे से मेरी पत्नी की लाश लटकी है। अब तक कमरे में भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर एक की आंखों में मेरे प्रति घृणा का सागर लहरा रहा था। सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, पत्नी का हत्यारा। मैं निर्दोष था, पर अपनी निर्दोषिता कैसे साबित करता? जब तक मेरी पत्नी जिंदा रही, मुझे उत्पीड़ित करती रही। मरने के बाद भी उसने मुझे नहीं बख्शा। जाते जाते भी वो मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा गई। हर कोई मुझे घृणा से ताक रहा था और पंखे से लटकी मेरी पत्नी की लाश मानो अट्टहास कर रही थी, आखिर मैंने तुम्हारी जिंदगी को जलाकर राख कर दिया ना। उसके भयानक चेहरे पर उसके मनोभाव प्रतिबिंबित होकर मानो कह रहे थे, देखा मेरा बदला, जीवन पर्यंत तुम लोगों की निगाहों में घृणा के पात्र बने रहोगे, एक जिंदा लाश के समान जीवन व्यतीत करोगे। क्या मैं जानता था कि मेरे एक थप्पड़ का ये परिणाम हो सकता है? काश मुझे पहले से ज्ञात होता कि वो इतनी भावुक है, तो शायद जीवन पर्यंत मैं उसके व्यंग बाण सहता रहता। दोनों हाथों से माथा पकड़कर मैं बैठ गया। मेरे कानों में एक ही आवाज़ प्रतिध्वनित हो रही थी, पत्नी हंता। दोनों हाथों से कान बंद कर मैं रो पड़ा। अपनी निर्दोषिता कैसे प्रमाणित करूं? इतने में पुलिस आ गई, मुझसे पूछताछ शुरू हुई। ये तो सभी ने कहा कि इनकी पत्नी से इनकी पटती नहीं थी। आए दिन इनकी पत्नी चीखती चिल्लाती रहती थी। दोष किसका है ये हम कैसे जान सकते हैं? हो सकता है इन्होंने तंग आकर अपनी बीवी की हत्या कर दी हो। मेरे पड़ोसी अवकाश प्राप्त सूबेदार ने मेरी बहुत सहायता की। उन्होंने कहा, ये तो बहुत पहले ही टाइप के कागज़ लेकर चले गए थे, इनके जाने के बाद भी इनकी स्त्री गालियाँ बक रही थी। पुलिस को लाश के आसपास कहीं भी मेरी उंगलियों के निशान भी नहीं मिले, इस कारण मुझे छोड़ दिया गया। पर समाज में मैं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। हर एक को आज तक यही विश्वास है कि मैं अपनी पत्नी का हत्यारा हूँ। घृणा से घिरी आंखों के बीच मैं ये नाटकीय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इतना सब कुछ हो जाने पर भी दुर्भाग्य ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये कहते कहते वो फिर रो पड़ा। थोड़ी देर बाद किसी प्रकार अपने को संतुलित करके उसने फिर कहना शुरू किया, मेरी बड़ी लड़की की उम्र 13 साल की है, इन तीनों बेटियों को मैं अकेला कैसे छोड़ता? आसपास का माहौल अच्छा नहीं था, इस कारण मुझे फिर से विवाह करना पड़ा। अब की बार मैंने काफ़ी छानबीन करके एक विधवा से विवाह किया, जिसके 10 साल का एक लड़का था। यह स्त्री बहुत भली है, मेरी बेटियों को बहुत प्यार करती है। घर की तरफ से निश्चिंत होकर मैं अपने काम में जुट गया। कुछ दिन मेरे बहुत अच्छे कटे। एक दिन मेरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर मुझसे कहा, इस घर को कल ही छोड़ दीजिए। मैं आश्चर्यचकित होकर उसका मुंह निहारने लगा। उसने रोते रोते बताया कि मकान मालिक ने हमारी बेटी के संग खराब संबंध बनाया है, और ये बात मेरी बेटी ने मुझे रो रो कर बताई है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले धरती खिसक गई। 2 दिन से मैं मकान की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। मैं जल्द से जल्द दूसरे मकान में चला जाता चाहता हूँ। हमारा मकान मालिक पक्का गुंडा है, उससे उलझकर हम कहीं नहीं रह पाएंगे, वो हमारी बेटी को बदनाम कर देगा। श्रीमती धवन ने उस आदमी को सांत्वना देते हुए कहा, मेरी एक सहेली है, वो किराए पर कमरे उठाती है, एक बड़े घर रसोई घर तथा स्नान घर का आप कितना दे पाएंगे ये बता दीजिए तो मैं उससे बात करूँ। उसने कहा, मैं 600 से ऊपर नहीं दे पाऊँगा। श्रीमती धवन जानती थी कि 600 में मकान मिलना मुश्किल है। उस आदमी ने उसके मनोभावों को शायद पढ़ भी लिया था। श्रीमती धवन ने आश्वासन देने के अंदाज में कहा, मैं पूरा प्रयत्न करूँगी। दूसरे दिन श्रीमती धवन ने अपनी सहेली से बात की। उसने कहा, मेरा कोई भी फ्लैट खाली नहीं है। वो आदमी शायद समझ गया कि श्रीमती धवन उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। उन्हें कुछ करना होता तो अपना ही फ्लैट जिसमें 3 कमरे थे उसे दे सकती थी। वो फिर नहीं लौटा। दो तीन दिन बाद ही श्रीमती धवन को विश्वविद्यालय का एक प्रवक्ता मिल गया। उसे मकान सौंपकर वो बेटे के पास लौट गई। 6 महीने बाद श्रीमती धवन 1 महीने के लिए वाराणसी अपनी कोठी में आ गई। जो किराएदार वो रख गई थी बहुत ही श्रेष्ठ और मिलनसार निकला। उस किराएदार तथा उसकी पत्नी के संग उनके दिन आराम से कटने लगे। एक दिन जब वो अपनी सहेली से मिलकर लौट रही थी तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। रास्ते में कोई रिक्शा न मिलने के कारण वो पैदल ही तेज कदमों से चल रही थी। उन्होंने अपने पीछे किसी आदमी की आहट सुनी, फिर वो आहट रुक गई। शायद वो आदमी किसी से बातें करने लगा था। अचानक एक पेड़ की आड़ से किसी ने निकलकर उनका मुंह दबा दिया। उनके मुंह से एक चीख निकली। पीछे आने वाले आदमी को उनकी चीख सुनाई पड़ी। वो जोर से चिल्लाया, माताजी घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। श्रीमती धवन को 2 आदमियों ने पकड़ रखा था। पीछे आने वाला आदमी दौड़ता हुआ उन तक पहुंच चुका था। उसने अपने कसरती दांव पेच से उन दोनों आक्रमणकारियों को बहुत जल्दी ही परास्त कर दिया। अपनी दाल गलती ना देखकर एक तो भाग खड़ा हुआ, दूसरे ने छुरा निकालकर श्रीमती धवन पर वार किया। बीच में वो आदमी कूद पड़ा, छुरा उसके सीने में धंस गया। एक जोर की चीख मारकर वो जमीन पर गिर गया। श्रीमती धवन ने जब उसे गिरते देखा तो चीख चीख कर लोगों को आवाज़ें देने लगीं। देखते देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। एक आदमी दौड़कर अपने घर से गैस लालटेन ले आया। रोशनी होते ही श्रीमती धवन ने पहचाना कि यह तो वही आदमी था जिसे उन्होंने किराए पर फ्लैट देने से इनकार कर दिया था। अपनी स्वार्थपरता को याद करके वो परिताप की आग में जलने लगी। वो रोती रोती उस आदमी के पास बैठ कर बोली, मुझ बुढ़िया की जान तुमने अपनी जान पर खेल कर क्यों बचाई? मैं तो कब्र में पैर लटकाए बैठी थी, मर भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम तो जवान हो, तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं, उनके हृदय पर क्या बीतेगी? इतने में उसके बच्चे और पत्नी पहुंच गई। उसकी दशा देखकर उसकी पत्नी उससे लिपट कर सिसकने लगी। वो रोते रोते बोली, हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? बच्चों के करुण क्रंदन से पास खड़े लोगों की आंखें भर आईं। उस आदमी के शरीर से काफ़ी खून निकल गया था। लोग गाड़ी लेकर आए ताकि उसे अस्पताल ले जाए। उसने अटकते अटकते कहा, मेरे पास बहुत कम समय है, मैं बचूंगा नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फिर उसने श्रीमती धवन की ओर अपनी करुण दृष्टि उठाई और कहा, माताजी, मैंने अंधेरे में भी आपको पहचान लिया था। आपकी जान बचाकर मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, ये तो मेरा धर्म था। ये कलंकित जीवन किसी के काम आया ये तो मेरा सौभाग्य ही कहा जाएगा। आप सभी जानते हैं कि मरता आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। आज मैं आप सबके सामने अपनी पत्नी तथा बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी का हत्यारा नहीं था। उसकी आंखों में वेदना का अथाह सागर उमड़ उमड़ कर लोगों को उद्वेलित कर रहा था। उसने कहना शुरू किया, केवल प्राण देकर ही मैं अपनी निर्दोषिता साबित कर सकता था, क्योंकि जिंदा रहने पर तो किसी ने मेरा विश्वास ही नहीं किया था। हर एक की आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। जिनकी आंखों में उसने अपने प्रति हमेशा घृणा देखी थी, आज उन्हीं आंखों में पश्चाताप देख उसने मुक्ति की सांस ली। शायद इतना बड़ा लांछन लेकर जाते उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। पत्नी तथा बच्चे चीख पड़े, हमें असहाय छोड़कर मत जाओ। शायद अंत समय उसको भी लगा कि इनका क्या होगा। उसकी आंखें भर आईं। श्रीमती धवन ने रोते रोते उसका हाथ पकड़कर कहा, आज आप सबके आगे मैं इस पवित्र आत्मा के शरीर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि आज से ये मेरी बहू और ये मेरे पोते पोतियाँ हैं। अपने जीवन में तो मैं इन्हें कोई अभाव नहीं होने दूंगी, बल्कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति के यही लोग वारिस होंगे। मेरे अपने बच्चे समर्थ हैं। बुझते दीपक में एक बार फिर से लौ उठी। उसने श्रीमती धवन का हाथ आँखों से लगा लिया। उसके चेहरे पर तृप्ति की एक दीप्त आभा छा गई। उसके मुंह से अस्फुट स्वर में निकला, विदा माँ।
लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण। ये थी अरबा रेडियो.com की प्रस्तुति।